ओम शांति। ओम श्री। फिर से एक बार प्यार से बोले ओम शांति। अभी तक जितनी सभा बैठी है इतना आवाज बुलंद नहीं आया। फिर से तीसरी बार बोले ओम शांति। अब जिस स्थान पे पर ओम शांति ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में शांति के वाइब्रेशंस देती है, जैसे बड़े बड़े हाइस्ट होते हैं, बड़े बड़े हो, समुद्र के बीच हो, दूर दूर तक रोशनी है। माउंट आबू ये आध्यात्मिक स्थान जो पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का प्रकाश, आप सभी आज माउंट आबू एक तपस्वी भूमि पे पधारे। जिस तपस्वी भूमि की वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बहुत ही सुहिमालित है। कोई जब नाम कहता है माउंट आबू तो कोई सोचते अच्छा हिल स्टेशन पर एंजॉय करने जाएंगे। और जब ब्रह्माकुमारी विद्यालय निमंत्रण देता है और वो भी स्पेशली इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में जो सबसे ऊंचा स्थान है, ऊंचान पर आना माना ऊंची प्राप्ति करना। जो भारत के वेद शास्त्र है वो इस भूमि के बारे में यह जानकारी देते हैं कि यह ऋषि मुनियों की तपस्या की भूमि है, तपोभूमि है। ये तपस्या जो है वह भूमि को चार्ज करती है। जैसे हम घर में लाइट का जब कनेक्शन कराते हैं तो साथ में अर्थिंग जरूर कराते हैं। अगर अर्थिंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट आता रहता है। तो अर्थिंग से क्या हो जाता है कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिशियन सिस्टम है वह विदाउट डिस्टर्बेंस बहुत अच्छा ऑपरेट हो पाता है। यह तपस्या से इस यह स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है और आप सभी 3 दिन के लिए इस स्थान पर, इस भूमि पर मेडिटेशन के वाइब्रेशन से, तपस्या की एनर्जी से फुली चार्ज्ड है। उस स्थान पर आपका 3 दिन रहना यह आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, जिस स्थान पर और जिस कार्यक्रम के निमित्त आप यहाँ पर आए हैं, महिला प्रभात की ओर से जो पूरे भारत वर्ष की महिलाओं के लिए यह सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसका विषय भी बहुत सुंदर है, विश्व परिवर्तन की नींव, सशक्त महिला। आज ये परिवर्तन का समय है, हम सब परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह परिवर्तन पॉजिटिविटी की ओर आगे जाए जिसमें महिला का विशेष योगदान है। एक होता है कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ न कुछ योगदान, परंतु आज का जो हमारा विषय है वो है नींव। नींव माने फाउंडेशन, बुनियाद। इस विश्व को नया रूप देने के लिए, एक विश्व को नया संवारने के लिए, सुजित और सुशोभित करने के लिए आप महिलाओं का एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण रोल है, परंतु वह महिला कौन हो? सशक्त महिला हो। आप सोचेंगे सशक्त महिला मन, जैसे कोई किसी संस्था से जुड़ता है, कोई डिग्री प्राप्त कर लेता है, कोई महिला अगर LLB की हुई है तो उस महिला के नाम आता है अरे एडवोकेट, कोई सर्जन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी सोशल समाज सेवी संस्था से जुड़ी हुई होती है, तो जो जिससे जुड़ जाता है उसके नाम के आगे वह मेंशन जरूर होता है। यहाँ पर बताया है कि विश्व परिवर्तन की नींव जो है वो सशक्त महिला है। सशक्त महिला माना जो महिला आध्यात्मिक और आंतरिक गुणों शक्तियों से संपन्न है, वही महिला इस विश्व परिवर्तन की नींव बन सकती है। और आप सभी कैसे उसकी नींव बनो, उसके लिए ही विशेष इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। महिला अगर गुणों की मूर्ति है, गुणवान है, सहनशील है, मधुरभाषी है, धैर्यवत है, तो वो मां लक्ष्मी का रूप है। जो महिला घर में बहुत ही मधुरता से, धैर्यता से परिवार को चलाती है, उसकी पहचान दी जाती है, ये महिला तो इस मंदिर में जैसे साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जो महिला स्वयं भी बुराइयों से बची हुई है, नेगेटिविटी से दूर है, दुर्गुणों से, गंदी आदतों से, और अपने परिवार को भी उन सब आदतों से दूर रखती है, वास्तव में वो महिला साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप है। आदि आदि जब इन सब आंतरिक शक्तियों को हम जागृत करते हैं तो वो ही महिला सशक्त महिला है। आप सबके अंदर शक्तियां समाई हुई है। अब उन सब शक्तियों को इस तपस्वी भूमि पर जागृत करके सशक्त महिला बनकर जाना है। इसी उद्देश्य से यह सेमिनार रखा हुआ है। अभी हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम इस विषय को और थोड़ा 2-5 मिनट आपको इसकी जानकारी दे रही हैं कि महिलाओं का ये जो प्रभाव है वो किस प्रकार से पिछले 25 सालों से यह सेवाएं अपनी दे रहा है, और जो सशक्त महिलाएं हैं अब मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगी, जो एक आपके सामने आइडियल है, आपके सामने आदर्श है, आपके सामने एक जीवित, एक जिंदा जागता एक मिसाल है, जिन्हें देखकर हम सभी भी इंस्पायर होंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी को, जो महिला प्रभात की चेयरपर्सन है। हम सब तालियों से आपका स्वागत करते हैं। हमारी आदरणीय शारदा दीदी जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो भी मंच पर आई। हम अपने तालियों को चालू ही रखेंगे। हमारी आदरणीय शारदा दीदी जी, हमारी आदरणीय सविता दीदी जी जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इस महिला प्रभात के, और हमारे राजू जी, ब्राता मोहन सिंगल जी, हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। यह हमारी त्रिमूर्ति सशक्त महिलाएं हमारे सामने उपस्थित हुई है। इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए विशेष हमारे जो अतिथि आज के इस प्रोग्राम में पधारे हैं, मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ वो भी मंच पर अपना स्थान लें। फर्स्ट है हमारी मिसेस पूर्वी बावे जो विशेष बॉम्बे से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल से पधारी हुई हमारी बहन विद्या कोइराला, नेपाल से पधारी हुई हमारी बहन विद्या कोइराला वह भी मंच पर आई। आप बहुत दूर नेपाल से आए हैं, जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। और उसके बाद हरियाणा गुड़गांव से पधारे हुए हमारे डॉक्टर विजेता आर्य, उन्हें भी मैं इनवाइट करती हूँ कि वो मंच पर आए। और जोधपुर से पधारी हुई हमारी मेयर बहन विनीता सेठ, उन्हें भी इनवाइट करती हूँ कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान लें। जोधपुर से पधारी हुई हमारी मेयर बहन विनीता सेठ, हमारी मेयर बहन के लिए भी सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम सभी 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। परमात्मा की याद सबसे बड़ी विधि है कार्य को सिद्ध करने के लिए। इस 3 मिनट साइलेंस में हम दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हम सभी को इस स्थान पे पहुंचाया, हमारे जीवन को सफल करने की प्रेरणा देने के लिए।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए।
कहा जाता है अतिथि देवो भव, आप सभी आए हुए और हमारे मंच पर सुशोभित हमारे विशेष आदरणीय दीदियां एवं विशेष अतिथि गण, मैं बहनों को इनवाइट करती हूँ कि वह मंच पर विराजमान हमारे सभी मेहमानों का गुलदस्ते और बैच के द्वारा स्वागत करें। गुलदस्ता एक स्नेह की निशानी होती है। जब भी कोई हमारे प्रांगण में पधारता है तो हम उन्हें फूल देकर उनका स्वागत करते हैं। फूल देना यह एक दिल का सच्चा स्नेह होता है। और आप सभी भी बाबा के इस दरबार में पधारे हैं, इस प्रांगण में पधारे हैं, अपनों का अपने के घर में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, आपका फूलों से स्वागत हो रहा है। हमारी आदरणीय शारदा दीदी जी, जो विशेष गुजरात से इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, बहने बैच लगाकर सम्मानित कर रही हैं। हमारी बहन विजेता आर्य, उनका फूलों से स्वागत हुआ। हमारी पूर्वी बहन जो बॉम्बे से विशेष पधारी हुई है यहाँ पर, जोधपुर की मेयर बहन विनीता बहन, उनका फूलों से स्वागत हो रहा है। हमारी तालियां तो चालू रहनी चाहिए ना, नहीं ताली? बहनों को फूल देने में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, हम सब तो एक ही स्थान पे बैठे हैं और हम बहुत सुंदर तालियों से स्वागत करें। हमारे आदरणीय भ्राता मोहन भाई जी नेपाल से पधारी हुई हमारी विद्या बहन, और हम सबको यहाँ पर एकत्रित करने में अहम भूमिका है हमारे डॉक्टर सविता बहन की, बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत ही हर्ष का दिन है। यह जो स्वागत का सिलसिला है यह सिर्फ गुलदस्ते और बैच से ही नहीं समाप्त होगा। यह सिलसिला, यह सुंदर मोमेंट को हम और भी आगे एंजॉय करते हैं। मैं मधुर वाणी ग्रुप को इनवाइट करती हूँ, हमारे सतीश भाई और उनके साथी गीत संगीत के द्वारा आप सभी का स्वागत करेंगे इस ज्ञान सरोवर महिला प्रभात के लिए, जिस प्रांगण में आप सभी पधारे हैं। साथ में हमारे नीतन भाई और हमारे सतीश भाई यह गीत भी खुद ही लिखते हैं, गीतकार भी हैं और संगीतकार भी हैं। माउंट आबू में जिस भी स्थान पे कार्यक्रम होते हैं हमारा मधुरवाणी ग्रुप जरूर जरूर सबका स्वागत करता है। गीत और संगीत जो होते हैं वह हमारे अंदर छिपे हुए भाव और भावनाओं को शब्दों में जाहिर करते हैं। गीत और संगीत वास्तव में हमारी आंतरिक भावनाएं होती है, परंतु उन भावनाओं को एक ध्वनि में उतार कर आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारा मधुरवाणी को।
ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।
एक बार सास्वर संवेद स्वर में ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति।
आ पाई तो आ गया बरसात का मौसम, संसार के उद्धार का आ गया मौसम। विश्व परिवर्तन की नींव सशक्त महिला है, शिव शक्तियों के अवतार का आ गया मौसम, और आपके स्वागत और सत्कार का आ गया मौसम, आपके स्वागत और सत्कार का आ गया मौसम। हमारा साथ दे रहे हैं हमारे हल्धर भाई, आप हॉस्पिटल में सेवारत हैं, और नितिन भाई मधुरवाणी के बहुत अच्छे स्वर सम्राट, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें।
हॉल में आवाज नहीं सुन।
शिव पिता के घर में शिव शक्तियाँ पधारी है, शिव पिता के घर में शिव शक्तियाँ पधारी है, आपका स्वागत करती मस्त फिजाए सारी है, आपका स्वागत करती दसो दिशाए सारी है।
आपकी तालियां साथ में थी।
परिवर्तन परिवर्तन की समय की हुई पुकार, परिवर्तन संकल्प ले आई शक्तियाँ शिव द्वार, परिवर्तन परिवर्तन की समय की हुई पुकार, परिवर्तन संकल्प ले आई शक्तियाँ शिव द्वार। विश्व परिवर्तन की नींव ये शक्तियाँ प्यारी है, आपका स्वागत करती मस्त फिजाए सारी है, आपका स्वागत करती दसों दिशाएं सारी है। जागो माता हो बहनों, माया को ललकारो, सद्गुणों से अपना दैवी रूप सवारो, जागो माता ओ बहनों माया को ललकारो, सद्गुणों से अपना दैवी रूप सवारो। आप वही तो देवियाँ जो असुर संहारी है, आपका स्वागत करती मस्त फिजाएं सारी है, आपका स्वागत करती दसो दिशाएं सारी है। मूल निष्ठ समाज की माता है निर्माता, वंदे मातरम ईश्वर भी गाता। मूल निष्ठ समाज की माता है निर्माता, वंदे मातरम ईश्वर भी गाता। अरावली की वादिया आरती उतारी है, आपका स्वागत करती मस्त फिजाएं सारी है, आपका स्वागत करती दसो दिशाएं सारी है। शिव पिता के घर में शिव शक्तियां पधारी है, आपका स्वागत करती मस्त फिजाएं सारी है, आपका स्वागत करती दसो दिशाएं सारी है, आपका स्वागत करती दसो दिशाएं सारी है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मधुरवाणी ग्रुप का। आप सभी का हाथ पांव नाच रहे थे कि मन भी नाच रहा था? सभी का, जिनका मन नाच रहा था वो फिर से जोरदार ताली बजाते, उनका स्वागत करो। इसी स्वागत के श्रृंखला की कड़ी को जोड़ते हुए अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ बॉम्बे उल्लासनगर से पधारी हुई तीन कुमारियां, बेबी काव्या, कुमारी जया और कुमारी दिया। ये त्रिमूर्ति कुमारियां आप सभी का नृत्य से, बहुत ही सुंदर नृत्य से अपनी प्रस्तुति देकर आप सभी का स्वागत करेंगी।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के महिला प्रभाग की तरफ से आप सभी का ज्ञान सरोवर प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप इस संसार की कल्पना दया क्षमा प्रेम व सहयोग के बिना कर सकते हैं? नहीं। इसलिए परमात्मा ने इस संसार में नारी को सर्व गुण देकर भेजा और नारी ने इस संसार में मां बनकर पालना की, बहन बनकर प्यार दिया, पत्नी बनकर रिश्ता निभाया और बेटी बनकर सबको अपनेपन का एहसास कराया। हे नारी, शिवाजी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी तक, सब तुम्हारी रचना है नारी। देश व दुनिया को बदलने में भी नारी आपका विशेष स्थान रहा है, क्योंकि आप जननी हो, शरीर की, संस्कारों की व शक्तियों की।
छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले, तुझसे
रही है रोशनी, तू ही जीवंत खुशी। अब
अब समय आ गया है अपने सत्य स्वरूप को जानने का, पहचानने का।
तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नवदुर्गा।
सुंदर नृत्य के द्वारा बच्चियों ने अपनी प्रस्तुति दिया। हम सब तालियों से इनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। दीदी सभी तबियत अभी इसी श्रृंखला से हम और आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है नेक काम करने वालों के स्वागत में संसार है। नारी जन्म भी देती, पालना भी देती, मौत के मुंह से भी बचाती है। नारी जीवन के हर मोड़ पर साथ देके आगे बढ़ाती है। वजूद बनकर, वजूद अपना बुलाकर नारी कई किरदार निभाती है। एहसान मानो नारी का जो घर को स्वर्ग बनाती है। एक सुखी परिवार और कुछ भी नहीं, एक सुखी परिवार और कुछ भी नहीं, स्वर्ग से भी पहले का स्वर्ग है। और नारी महिला अपने परिवार का स्तंभ है। ऐसी नारी की महानताओं को ध्यान पे रखते हुए आप सभी के स्वागत में आ रहे हैं हमारे आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी, जो आप 1962 में अपने स्टूडेंट लाइफ से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और स्टूडेंट लाइफ से ही आप एक्टिवली संस्था की सेवाओं से जुड़े रहे। बिहार, आसाम, गुजरात कई स्थानों पर आप सेवा केंद्र खोलने के भी निमित्त बने। आपने अपनी पढ़ाई में एमटेक में मास्टर डिग्री प्राप्त की हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपकी सेवाओं में अहम भूमिका है। आप राज्यों का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं। आप संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के भी सदस्य हैं। आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के चेयरपर्सन हैं। और जिस ज्ञान सरोवर के परिसर में आप सभी बैठे हैं, आप इस स्थान पर कोऑर्डिनेटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश विदेश में जो भी सेमिनार्स होते हैं, आप अपने वक्तव्य से वहाँ पर अपनी उपस्थिति देकर सभी को बहुत बहुत लाभान्वित करते हैं। कम से कम 1000 प्रवचनों से भी जास्ती अलग अलग विषयों पर आपने अपने वक्तव्य दिए हैं। साथ में कलम अर्थात किताब लिखना, यह भी आपकी बहुत बड़ी कला है। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, एक आध्यात्मिक सशक्तिकरण, शिक्षा में नई दिशा, ग्राम उत्थान, श्रेष्ठ संस्कार, संसार के लिए सहयोग। आप विशेष जो पर्यावरण एनवायरमेंटल होता है उसमें आपकी विशेष सेवाएं हैं। इंजीनियर साइंटिस्ट विंग से जुड़े हुए होने के कारण आपको उसी क्षेत्र में 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक पर्यावरण श्री के अवार्ड से सम्मानित किया है, दूसरा ग्रीन आइडल से। तो ऐसी महान विभूति को हम आज आई हुई महिलाओं के लिए आपको इनवाइट करते हैं कि आप अपना वेलकम एड्रेस और संस्था का एक संक्षिप्त परिचय कि जिस संस्था में आप यहाँ पर पधारे हैं उस संस्था का परिचय और आप सभी का स्वागत करें। मोहन भाई जी।
ओम शांति। मंच पर विराजित परम आदरणीय राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी, जो कि इस विंग की चेयरपर्सन है तथा विशेष दिल्ली से पधारी हैं, मंच पर बैठे हमारे अन्य अतिथिगण मिसेस पूर्वी भावे जी, थिएटर एंड टीवी एक्टर, भरतनाट्यम डांसर, मराठी कंपेयरर एंड मॉडल मुंबई, मिसेस विद्या कोइराला जी, सेंट्रल यूनियन एडमिनिस्ट्रेटर नेफ्सकन नेपाल, डॉक्टर विजय विजाता आर्या जी, डायरेक्टर कायाकल्प योगा एंड न्यूरोपैथी गुरुग्राम, राजयोगिनी बी के शारदा दीदी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर वुमेन विंग, डॉक्टर बी के सविता जी, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर वुमेन विंग, तथा मंच पर विराजित अन्य बहने और सभा में उपस्थित भारत के कोने कोने से और नेपाल से भी पधारे हुए आप सभी बहन और भाइयों, विशेषता बहनों, मुझे विश्वास है कि आप जब से इस कॉम्प्लेक्स में आपने कदम रखा होगा आपको एक अद्भुत ही शांति और शक्ति का एहसास हुआ होगा। ये ज्ञान सरोवर अपने आप में एक विशिष्ट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है इसमें प्रकृति का किसी प्रकार से दोहन न हो, यह विशेष ध्यान रखा गया है। इसीलिए यहाँ पर आते ही मानव प्रकृति और जो बाहरी प्रकृति है 5 तत्व, उनके बीच में एक स्वतः ही सामंजस्य स्थापित हो जाता है। ऐसा अभी तक पिछले 25 से अधिक वर्षों से ये बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो भी आते हैं देश विदेश से सब इसी बात का विशेष अनुभव करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जिस हॉल में आप बैठे हैं ये हारमनी हॉल के नाम से विशेष जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं वह मनुष्य की इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी हारमनी कैसे सुसंवादिता स्थापित हो, उनको विशेष ध्यान में रख करके किए जाते हैं। यह जितने भी कार्यक्रम होते हैं यह विशेषतः मनुष्य की इंटरनल हार्मनी का ख्याल करते हुए होते हैं। हम सभी का अनुभव है कि हम सब के मन में अनेकानेक विचार चलते हैं, विचार कुछ चलते हैं, कई बार वाणी से कुछ और निकल जाता है और कर्मों में कुछ और ही आ जाता है। इसीलिए तीनों के अंदर विशेष हार्मनी रहे, सुसंवादिता रहे, वो इस हॉल के अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। मैं इस बात पर विशेष आपको ध्यान खिंचवाना चाहूंगा कि ये हार्मनी हॉल में इसमें लगभग 15 भाषाओं का ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि विश्व भर से कोने कोने से लोग आते हैं विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों से। अतः इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ अनेक ट्रांसलेशंस की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके नीचे एक हॉल है, वो मेडिटेशन हॉल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर इस ज्ञान सरोवर में रहने वाले जो हैं वो प्रातः 3 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है मेडिटेशन योग का, और इस कारण से यहाँ के वातावरण में बहुत ही स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअली चार्ज्ड एनवायरनमेंट है। और यहाँ आके आप आगे आने वाले 3 दिनों में और भी ये अनुभव करेंगे कि विश्व के अनेकानेक निगेटिव विचारों से जैसे आप कुछ समय के लिए बिल्कुल ही अलग हो गए हैं, यहाँ पॉजिटिविटी का आप अनुभव करते रहेंगे। इसके साथ ही इसके सामने एक कॉम्प्लेक्स है, ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग, वहाँ पर भी पैरेलल प्रोग्राम होते हैं और उन कार्यक्रमों के अंदर भी यह जो कार्यक्रम होते हैं इस बात का ध्यान रखा गया है। और वहाँ के कंस्ट्रक्शन में भी आप देखेंगे कि बिल्डिंग के बीच बीच में भी कई पेड़ हैं, जिससे कि किसी प्रकार का भी कोई भी जो प्रकृति को नुकसान न हो, उसका दोहन न हो। और इस कारण से यहाँ का एनवायरनमेंट जो है बहुत ही शांत और सुंदर तो लगता ही है, लेकिन आंतरिक सुंदरता को भी महत्व देने वाला यह विशेष एक प्रांगण है। फर्दर उसके बाद और आगे जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर के, तो वहाँ पर डाइनिंग कॉम्प्लेक्स है, जो आपने देखा ही होगा आज आए होंगे। और उस डाइनिंग कॉम्प्लेक्स में सब प्रकार के भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध है। वैसे तो यहाँ पर आप आए हैं तो भोजन बहुत ही सात्विक पवित्र भोजन यहाँ पर मिलेगा आपको, फिर भी साथ में अगर आपको किसी का कोई उपवास या कोई और आवश्यकता हो तो वो कृपया अपना टीचर बहन को बोलें, जिससे वो सुविधा प्रदान की जा सके। और ट्रेनिंग सेंटर इस भोजन कॉम्प्लेक्स के आगे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है, और उसके बाद सबसे नीचे की तरफ एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। वैसे तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ के प्लांट के एक विशेषता ये है कि उसके साथ साथ एक जो थॉट ट्रीटमेंट प्लांट जो है सारे कार्यक्रम के अंदर वो विभूषित होता है। मुख्य यह कार्यक्रम जो भी है, हमारी निगेटिव विचारधारा को पॉजिटिव विचारधारा में हम कैसे कन्वर्ट करें। हम सब लोगों को अनुभव है कि आजकल संसार में कई प्रकार की न चाहते हुए भी कट थ्रोट कंपटीशन है, निगेटिव विचारधाराएं हैं। इसीलिए ये एक यहाँ के कार्यक्रमों की एक विशेषता है। इसीलिए जो भी कार्यक्रम है वो होलिस्टिक नेचर के होते हैं, आपने भी अपने उसके अंदर देखा होगा बहुत होलिस्टिक कार्यक्रम। और यहाँ पर भी हमारे जो अनुभवी जो बोलने वाले वक्तागण बैठे हुए हैं, विशेष करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हर एक अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही विशिष्ट अनुभवी है, इसलिए जो भी कार्यक्रम होते हैं होलिस्टिक नेचर के, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पिरिचुअल, सब क्षेत्रों का समावेश करते हुए वो कार्यक्रम है, वो सब आपने अपने प्रोग्राम बुकलेट में देखे भी होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी वक्तागणों का, जो विशेष महानुभाव आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ साथ आप सब लोग भी जो आए हैं उनका भी एक विशिष्ट बहुत अभिनंदन है। इस संस्था के परिचय से तो आप आए ही होंगे यहाँ पर, क्योंकि जब आप यहाँ पर आए हैं किसी ने आपको इस कार्यक्रम का बताया भी होगा, इसलिए ये कार्यक्रम के लिए विशेष बहुत ज्यादा बताने की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात मैं विशेष बताना चाहूंगा कि जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, परमपिता परमात्मा निराकार शिव परमात्मा ने साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापना की, जिसका कि विशेष विशेष परिचय आपको एक सत्र में दिया ही जाएगा। तो 1936 से लेकर ये जब स्थापना हुई हैदराबाद सिंध कराची में, तब अनडिवाइडेड इंडिया था, भारत संपूर्ण एक था, और तब वहां पर ये स्थापना हुई और धीरे धीरे ये एक जो घरेलू सत्संग के रूप में स्थापना हुई, वो बढ़ते 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 एक बहुत बड़े ओम मंडली उस सत्संग ने को नाम दिया गया और उसने स्वरूप धारण किया गया। और वहां पर 1950 तक ये हैदराबाद सिंध कराची में रहे। वहां पर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई, उनमें आने वाली एक विशिष्ट आत्मा ओम राधे थी, और जिनको कि इनका सबका मॉनिटर नियुक्त किया गया और जगदम्बा सरस्वती के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। और इस प्रकार से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती के निर्देशन में ये संस्था बढ़ती रही, और 1950 में भारत में इसका स्थानांतरण हुआ और माउंट आबू में हेडक्वार्टर बना। और जो आप में से शायद कदाचित कुछ आज ने देख लिया होगा, न देखा हो तो आप एक दिन इस बात के लिए ही मुकर्रर किया गया है कि आप लोग ऊपर जा करके वह सब देखें, वो पांडव भवन में, वहां पर आप चार धाम का भी दर्शन करेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जगदम्बा सरस्वती जी के भी, उनका भी वहां पर चित्रों का, उनके कार्यों का अवलोकन कर सकेंगे। और इसके पांडव भवन के अतिरिक्त एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है ऊपर, ऊपर माने यहाँ ज्ञान सरोवर में के अलावा दूसरा ये कॉम्प्लेक्स ज्ञान सरोवर है, जिसमें कि आप आए हैं, जिसका वर्णन आपको बताया गया। एक तीसरा कॉम्प्लेक्स है जो ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये संस्था केवल स्पिरिचुअल एजुकेशन ही नहीं देती बल्कि लोगों के स्वास्थ्य का भी संपूर्ण रीति से ख्याल रखा जा सके, इस उद्देश्य से एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है। और वहाँ पर अधिकतर निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे कि हरेक के हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जा सके। इसके अतिरिक्त नीचे जो शांतिवन है, वो शांतिवन में आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये एक पिलर लेस हॉल है, लगभग 25,000 की कैपेसिटी का, और वहाँ पर अनेक कार्यक्रम होते हैं, वो भी जब आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे ही। ज्ञान सरोवर की एक विशेषता जहाँ आप बैठे हैं वो ये कि इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत लगभग 20 रिंग्स का निर्माण किया गया है जिसमें सभी प्रोफेशंस का समावेश हो जाता है। उन्हीं में से आज एक विंग महिला विंग की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो कि आप सबको मालूम ही है। और यह सारे कार्यक्रम जो होते हैं भारत के में भी विभिन्न विंग्स उनके ही लिए नहीं बल्कि विदेशों में जो कार्यक्रम होते हैं विदेशों में जो हमारी ब्रांचेज हैं वहाँ से भी डेलीगेट्स आते हैं। आपको भी ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इस संस्था का कनेक्शन जो यूनाइटेड नेशन से भी है संयुक्त राष्ट्र संघ से और वहाँ की दो इम्पोर्टेंट बॉडी यूनिसेक और यूनिसेफ तो उसके अंदर ये कंसल्टेटिव स्टेटस का मेंबर है। और जिस संस्था का बीज 1936 में एक छोटे से सत्संग के रूप में बोया गया था वो आज एक विशाल जो संस्था बन करके पूरे विश्व भर में विश्व के लगभग 140 देशों में इसके 500 से अधिक ब्रांच हैं। भारत में जो ब्रांचेस हैं वो तो हैं ही हैं। तो ये संस्था अपने आप में एक विशिष्ट कार्य कर रही है इसके बारे में आपको और अधिक विशिष्ट बताया जाएगा। मैं और अधिक आपका समय न लेकर के एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब आप यहाँ से जाएंगे तब एक संपूर्ण मानव बन करके जाएंगे। संपूर्ण मानव माने जीवन के जितने भी पहलू बताए गए हैं उन सब में काफी हद तक मास्टरी हासिल करके जाएंगे क्योंकि जो भी आपको यहाँ पर क्लासेस कराई जाएंगी वो सब उन बातों को जीवन की बातों को ध्यान में रखते हुए ही वो कराई जाएंगी। एक बार पुनः अभिनंदन धन्यवाद ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत आभार हमारे आदरणीय भ्राता राजू जी मोहन सिंगल जी वरिष्ठ भ्राता होने के नाते आपने आई हुई हमारी सभी बहनों माताओं को अपने दिल की शुभकामनाएं दी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं इस महिला प्रभाग का लक्ष्य और उद्देश्य। कहा जाता है गर्ल विथ ड्रीम बिकम वुमेन विथ विजन। ड्रीम के लिए तो लॉजिकल माइंड चाहिए जो हम सभी के पास है, परंतु ड्रीम को विजन बनाने के लिए और विजन को विजडम बनाने के लिए चाहिए स्पिरिचुअल नॉलेज। जो हमारा विजन है वो विजडम बन जाए उसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज आध्यात्मिक ज्ञान का तीसरा नेत्र वो कैसे हमारे विजडम को बढ़ाता है हमें हमारे जीवन के सही लक्ष्य और उद्देश्य तक पहुंचाता है। क्योंकि जब तक जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को हम नहीं समझेंगे जैसे किसी छोटे बच्चे को हम पेपर और पेन दे दें और उसे कहें कि आप कुछ ड्रॉ करो इस पे और बच्चा विदाउट कुछ इमेजिन किए विदाउट कोई विजन क्रिएट किए हुए सिर्फ पेन चलाता रहे पेपर पर तो वह पेपर कुछ समय के बाद वेस्ट पेपर हो जाएगा रद्दी पेपर हो जाएगा। परंतु वही बच्चा वह पेन पेपर पर चलाने से पहले एक माइंड के अंदर विजन क्रिएट कर दे कि मुझे इस पे मोर बनाना है मुझे इस पे नेचर की सीन बनानी है एबीसी कोई भी सीन मुझे बनानी है। विजन क्रिएट करने के बाद जब उसकी पेन चलेगी पेपर के ऊपर तो वह एग्जीबिशन में लगाने के लिए एक बहुत सुंदर आर्ट पेपर हो जाएगा तो उससे उस पेपर की वैल्यू बढ़ जाएगी। पेपर तो दोनों को ही दिया, पेन भी दिया, इतने रद्दी पेपर कर दिया, इतने उसे डिजाइन आर्ट पेपर बना दिया। जीवन भी ऐसा ही है, जब उसमें लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो हमारा जीवन वैल्यूएबल बन जाता है। ऐसे महिला जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य, महिला प्रभात का लक्ष्य और उद्देश्य, इसे प्रकाशित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय शारदा दीदी जी। आप गुजरात से पधारे हैं, आप एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता हैं। पिछले 52 वर्षों से आप इस ब्रह्माकुमारी विद्यालय में अपनी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपने बीएड एमए आर्ट्स की डिग्री प्राप्त किया है। आपका जयपुर में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क हुआ। आप अल्प आयु 21 वर्ष की आयु में ही आपने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। 5 साल आपने विदेश में भी अपनी सेवाएं दिया, 7 वर्ष आप दिल्ली में भी अपनी सेवाएं दी, अब पिछले 35 वर्षों से आप गुजरात में अंबावारी सेवा केंद्र की संचालित रहे, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में भी जो भी सेमिनार्स एवं ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज होते रहते हैं, आप उनकी भी निर्देशिका हैं। वर्तमान में आप महिला प्रभात के राष्ट्रीय संयोजिका हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी को। आपने सुना होगा, कहते हैं कि एक नवरात्रा आता है जिसमें चेत नवरात्रा, वो छोटे नवरात्रे होते हैं, और एक आता है जिसमें बड़े नवरात्रे होते हैं जिसे शरद नवरात्रा कहते हैं, और उसी में शरद पूर्णिमा भी आती है। शरद माना ही क्या, भव्य, बड़ा और महान, ऐसी महानता की, ऐसी भव्यता की मूर्ति हमारी शारदा दीदी जी आपको इस महिला प्रभात की जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य उस पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय शारदा दीदी जी।
ओम शांति। आज की ये मंगल संध्या, गौधूले का समय, और आप सभी भारत और नेपाल के स्थानों से यहाँ एकत्रित हुई है, सम्माननीय मंच, जिस मंच पर विराजमान भिन्न भिन्न क्षेत्रों की निपुण महिलाएं विराजमान हैं, जो आज के स्वागत सत्र की एक सुंदर अनोखी शोभा है। हम बड़े सुंदर विषय को लेकर के एकत्रित हुए हैं कि विश्व परिवर्तन की नींव, सशक्त नारी। सारे विश्व में एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एक ऐसा विद्यालय कहूं, इंस्टीट्यूशन कहूं, जहां मैक्सिमम महिलाएं हैं, और विश्व की सबसे बड़ी महिला संस्था है। नो डाउट हमारे भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने अपने साकार माध्यम से की। और मैं महसूस करती हूं उसी समय से विश्व में भी थोड़ा थोड़ा नारियों के प्रति एक दृष्टिकोण, एक सम्मान की भावना जागृत हुई, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो या धार्मिक में हो, राजनीति में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, आगे बढ़ती रही है। जैसा कि विषय है परिवर्तन, क्या आप समझती हैं ये सिर्फ परिवर्तन नहीं होगा लेकिन महापरिवर्तन होगा, और उसकी नींव डालने वाली एक सशक्त महिला है जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा ने महसूस किया कि नारी जिसके प्रति एक भिन्न दृष्टिकोण समाज में है उसे सशक्त बनाकर विश्व का परिवर्तन करने वाली एक सशक्त नारी के रूप को समाज में प्रदर्शित किया जाए। आप और हम सब जानते हैं अगर शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे कुछ भाई भी बैठे हैं, भाई सशक्त हैं। शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भी सशक्त है, शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अधिक शिक्षित है, धन की दृष्टि से देखा जाए तो वो कार्य भी भाइयों का ही है, लेकिन शिक्षा की देवी सरस्वती है, शक्ति की देवी दुर्गा है और धन की देवी लक्ष्मी है। पुनः मात्र देवो भव उस नारी शक्ति को पुनः हम जागृत होता हुआ भी महसूस कर रहे हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने हम सभी को लक्ष्य दिया कि सारे विश्व का नव निर्माण, मनुष्य के जीवन का परिवर्तन, समाज में नैतिक मूल्यों की और चरित्र निर्माण की पुनर्स्थापना, घर घर को स्वर्ग बनाना, हर नर नारायण हो, हर नारी लक्ष्मी हो, हर बालक श्री कृष्ण हो, हर बाला श्री राधे हो, फिर से एक ऐसी स्वर्गिक दुनिया का निर्माण करें जहां गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते थे, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, जहां किसी भी प्रकार का दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, ऐसा सुंदर संसार, ऐसी सुंदर वो सतयुग की दुनिया, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए हम सब पिछले अनेक वर्षों से इस श्रेष्ठ कार्य की ओर अपने समर्थ शुद्ध पवित्र शक्तिशाली संकल्प से जुटे हुए हैं, और दिन प्रतिदिन हम उस समय को समीप आता हुआ महसूस कर रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे कि दुनिया बहुत जल्दी परिवर्तन की ओर जा रही है, लेकिन आपको जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो परिवर्तन कुछ भिन्न दिखाई दे रहा है। क्राइसिस दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड वॉर दिखाई दे रही है, लोगों में एक भय भरा हुआ है, अनसर्टनिटी है, क्या होगा, कैसे होगा, ये मानव जाति का क्या होगा। लेकिन हम जो दृश्य देख रहे हैं, हमारी एक नई सोच, नई दिशा, नई दृष्टि और नया दृष्टिकोण है। हम अपनी दृष्टि को बदलें तो दृष्टिकोण बदल जाएगा, और हम उस नई सोच से ये देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ही आने वाला भविष्य एक स्वर्णिम दुनिया होगी, एक दैवी दुनिया होगी, जहां एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक कुल होगा। ऐसा सुंदर संसार हम स्वप्न में नहीं लेकिन साकार में देख रहे थे। मुझे विवेकानंद स्वामी का वो वाक्य याद आ रहा है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मुझे 100 ब्रह्मचारी युवक मिल जाए तो मैं संसार को बदल सकता हूँ, लेकिन यहाँ लाखों भाई बहन ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करते हैं तो ये संसार महापरिवर्तन की उस वेला की अब अंतिम घड़ियों में है, जो हम एक स्वर्णिम दुनिया जरूर देखेंगे और उसकी दुनिया की लाइफ बोट की नेविगेटर महिला है। इसका आपको एक बहुत नशा, एक खुशी और ये खुशखबरी आप सबके लिए है, और हम चाहते हैं आप सभी हमारे साथ इस श्रेष्ठ कार्य में विश्व की नेविगेटर बने, जो दुनिया देखे कि नारी क्या नहीं कर सकती है। कहा भी जाता है नारी और कलम संसार को बदल सकते हैं। नारी में वो शक्ति है, वो जो चाहे सो कर सकती है। हमारे देश में जितनी वो महान विभूतियां हुई उन सब के पीछे नारी का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, तुलसीदास हो, कालिदास हो, चाहे विदुषी नारियां हो, गार्गी, मैत्रेयी, कौशली हो, सीता हो, दुर्गावती हो, लक्ष्मीबाई हो, और आज के इस टेक्नोलॉजी के समय में याद करती हूँ उन नारियों को जिन्होंने इस धरती से पार, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स वहां तक पहुंची है। तो क्या हम सब अपनी सोच को बदलकर, अपने दृष्टिकोण को बदलकर, अपनी थर्ड आई ऑफ विजडम को, जिसका आधार राजयोग और सहज ज्ञान है, जिसका कल प्रातः है आप प्रथम सेशन में आपको बताया जाएगा कि वो राजयोग क्या है। वो एक फाउंडेशन है, वो एक नींव है आत्मा की रियलाइजेशन, क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, विश्व के परिवर्तन की तरफ हमको ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? वो सेशन सुनने के पश्चात आप महसूस करेंगे आपकी दृष्टि, आपका दृष्टिकोण, आपकी दिशा, आपकी सोच किस प्रकार से बदल गई है। जब सोच बदलती है, दिशा बदलती है, और जैसा कि हमारा लक्ष्य है स्वयं का परिवर्तन करके हम विश्व का परिवर्तन करें, उस परिवर्तन की ओर हम अपने आप को ले जाएंगे, और ये परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ, सुखदायी, आनंददायी होगा। तो हमारे विचार सत्य हो, शिव हो अर्थात कल्याणकारी हो, और सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, जिनसे स्वयं का भी जीवन श्रेष्ठ बने, आदर्श बने, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हो और उसके साथ साथ औरों के लिए एक प्रेरणा देने वाला हो। तो कहा, वेयर आर द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आप सब में वो दिखाई दे रहा है। आप वो नारियां हैं, आप वो शिव की शक्तियां हैं। सिर्फ आवश्यकता है सेल्फ को एम्पावर करने के लिए, और वो पावर भी है, वो गुण भी है, सिर्फ उस सर्वशक्तिवान से, सर्वशक्तियों के स्रोत से, सुप्रीम सैटेलाइट से कम्युनिकेट करके स्वयं में उन सुषुप्त शक्तियों को और गुणों को जागृत करते। वो राजयोग हमें सिखलाता है, क्योंकि नारी अपने आप में गुणों का, शक्तियों का एक अद्भुत बंश है। उसमें सहनशीलता, त्याग, तपस्या, सत्यता, सौंदर्य, निर्माणता, हार्मनी, सहानुभूति, सेवा भाव, उसको एक ईश्वरीय देन है जो परिवर्तन में सबसे बड़ी विशेष विशेषता है। तो आइए हम अपने मिशन पर, अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए इस श्रेष्ठ संकल्प को, शुद्ध संकल्प को साकार करें और इस समाज को, देश को और विश्व को एक सुखमय, सुंदर संसार बनाए। ओम शांति।
बहुत बहुत आभार हमारे आदरणीय शारदा दीदी जी का, जो अपने सुंदर अनमोल वचनों से हमारे जीवन का लक्ष्य और हम कैसे स्वयं को गुणों की मूर्ति बनाकर इस विश्व परिवर्तन में अपना सहयोग दे सकते हैं। दीदी जी, हम सब आपको आश्वासन देते हैं कि अवश्य ही आपके द्वारा जो आज महिलाओं को प्रेरणाएं मिली है, उन प्रेरणाओं को एक अपने जीवन में प्रयास के रीति से अपनाने का जरूर जरूर संकल्प लेंगे। हम एक हाथ की ताली से दीदी को अपना आश्वासन जितलाएं। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं एक जाना पहचाना चेहरा, जिन्हें आप टीवी में, फिल्म स्क्रीन में देखते हैं, हमारी बहन पूर्वी भावे। आप मराठी टेलीविजन का एक बहुत जाना पहचाना चेहरा हैं। 20 सालों से आप भरतनाट्यम डांस में अपनी साधना कर रहे हैं। झांसी फेस्टिवल, काला घोड़ा फेस्टिवल, अनेकानेक प्रसिद्ध फेस्टिवल्स में आपने अपने कला का प्रदर्शन किया है। आपका बॉम्बे में अपनी डांस एकेडमी है, जहां पर आप स्टूडेंट्स को ये भरतनाट्यम का की कला सिखाते हैं। आप उन्हें आपको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। आप एक प्रख्यात टीवी एंकर भी हैं। विशेष आप तभी प्रसिद्ध हुए हैं जब जो क्रिकेट मैच में जो मराठी के अंदर ट्रांसलेशन था, उसमें जब से आप एक चेहरा आपका सामने आया, तब से हमारी पूर्वी भावे सभी के दिलों में छा गई है। और आज आप इस महिला सेमिनार में आपने अपनी उपस्थिति देकर इस सेमिनार की भी शोभा बढ़ाई है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप इस सेमिनार के लिए अपनी शुभकामनाएं, गुड विशेष दें, बहन पूर्वी भावे।
धन्यवाद दीदी। ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी जो दिव्य हस्तियां यहाँ पे हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ पे जो लोग हैं उनमें मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं काफी डरी हुई हूँ इस वक्त, मुझे क्या बोलना था क्या बोलना है, सब दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि हम यहां सब इकट्ठा हुए हैं. फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज एम्पावर्ड विमेन, और मुझे सच में ऐसा लगता है कि पिछले 20 सालों में मैंने जो देखा है उस हिसाब से लड़कियां, महिलाएं, एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो या कोई भी दूसरा फील्ड हो, उसमें बहुत ही सिंसियरली, सीरियसली पढ़ाई करके, काम करके, मेहनत करके अचानक से आगे आ गई, जैसे कोई क्रांति हुई हो. ये वो सिर्फ अकेले नहीं कर सकती, पूरे समाज का उन्हें साथ तो मिला ही है, लेकिन हम महिलाओं को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो अष्टावधानी होती है, उन्हें घर में भी सब चीजें एक साथ करने की आदत होती है, इसलिए जब भी किसी क्षेत्र में वो जाके कुछ सीखती है या फिर कुछ अपना काम करती है तो वो सारे गुण वहां वो लेके जाती है और वहां फिर से अलग तरीके से अपना एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन कर लेती है. मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो मैं दोनों भाषाएं मिक्स करके बोल रही हूं, और उसकी वजह से एक परिवर्तन तो आया है, हम सब देख रहे हैं. पहले इंडिपेंडेंस दिया जाता था, आज इंडिपेंडेंस अर्न कर रही हैं महिलाएं खुद से, चाहे पैसों की बात हो या फिर एजुकेशन की बात हो या पावर की बात हो, लेकिन सोसाइटी जो है वो एक साइड से नहीं चलती. शायद हमारे समाज को बहुत सारी शतकों से एक तरीके से जीने की आदत थी, और ये जो अचानक से परिवर्तन आया है शायद उसकी वजह से एक डिस्कम्फर्ट होता है, खास करके डोमेस्टिक लाइफ में या फिर जहां रिश्ते जुड़ने की बात होती है परिवारों में. तो फ्रॉम माय जनरेशन मैंने ये देखा है कि लड़कियां या तो करियर करती है, फिर करियर ही करती रहती है, और उसके बाद जो चीजें उन्हें करनी थी और जो सपने लेके वो बड़ी हुई थी वो कहीं दूर रह जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स है वो भी उनके साथ आए. तो उसके लिए एक अलग सा इंटरनल एक्सटर्नल परिवर्तन होना काफी जरूरी है ताकि दोनों साथ में आगे बढ़े. ये डेफिनेटली कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, पुरुष और महिला हमेशा एक साथ ही आगे बढ़ते आए हैं और एक साथ ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी शाब्दिक या इमोशनल हिंसा के बिना, क्योंकि कभी कभी होता है आजकल ये बहुत ज्यादा यंगस्टर्स में कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्रिएट होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो पूरा प्रोग्राम है यहां का उसमें हम खुद पे हमारे इमोशंस पे, हमारी बुद्धि पे कंट्रोल रख के महिलाएं अपनी शक्ति कैसे और अच्छी तरह से पावर यूज कर पाएंगी, ये शायद यहां बहुत अच्छी तरीके से मैं सीख पाऊंगी, ये मुझे कॉन्फिडेंटली लग रहा है. एक और चीज है, मुझे दीदी ने एक्चुअली पूछा था कि बताया था, सुनीता दीदी और अंजलि दीदी जिनकी वजह से मैं यहां आई हूं, उन्होंने कहा था कि पहले आप बताओ कि आप यहां क्यों आए हो. तो मैंने बहुत सोचने की कोशिश की कि मैं यहां क्यों आई हूं, तो इसका एक सिंपल आंसर तो यह है कि उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगी, और मैंने कहा हां, और मैं यहां आ गई. लेकिन कोई अगर ठोस मकसद है तो वो क्या है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं. शायद मुझमें वो इंटरनल एक्सटर्नल हार्मनी की कहीं कमी है, लेकिन उसके बारे में सोच के तो मैं यहां नहीं आई हूं. मेडिटेशन के बारे में मैं काफी क्यूरियस हूं, तो डेफिनेटली मुझे उसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है और उसके लिए मैं यहां आई हूं. मैं मिसेस नहीं हूं वैसे, मैं मिस पूर्वी भावे हूं, तो क्या मैं उसके लिए आई हूं कि कैसे मिसेज बन पाऊं, लेकिन वो भी जवाब मुझे पूरी तरीके से सही नहीं लगा जब मैंने खुद को पूछने की कोशिश की। तो मुझे सच में ऐसा लगता है मैं कोई रिलीजियस काम के लिए खुद इनिशिएटिव लेके कहीं नहीं जाती हूं। स्पिरिचुअलिटी मुझे बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ बहुत ही ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ, रिलीजन से भी ज्यादा, और उसकी वजह से मेरा बहुत ही अच्छा कनेक्ट ब्रह्म कुमारीज के पूरे एसोसिएशन के साथ हुआ। लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि कोई तो रीजन है जिसकी वजह से मुझे यहाँ लाया गया है, और जब मैं ये पूरा कॉन्फ्रेंस अटेंड करके जाऊंगी तब भी मुझे पता चलेगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि राजयोग की ताकत डेफिनेटली उतनी ज्यादा है। और मैं सच में आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू एवरीवन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ राजयोगा एंड यू नो माय ओन बीइंग एंड माय ओन माइंड, and I'm hoping that I will come to first know about what questions I have at this stage in my life and also get to know the answers or at least move towards the way, and I'm very confident about it. Thank you so much for listening to me, and thank you so much for inviting me here. Thank you. Om Shanti.
Many thanks hamari behan Purva. कोई शक्ति है जो आपको यहाँ खींच कर ले आई, और एक सस्पेंस है जो आप समझ यहाँ पर समझने के बाद तीन दिन कॉन्फ्रेंस में थी, वो कौन सी एनर्जी थी जिसके अट्रैक्शन से आप यहाँ पर पहुँचे। और हमारी शुभकामना है कि वह आध्यात्मिक शक्ति व सुप्रीम पावर सदा आपके साथ रहे, आप विद्यालय से जुड़े रहें और अपनी विशेषताओं की सेवाएं इस संस्था को देते रहें। अब नेक्स्ट मैं जो स्पीकर को इनवाइट करने जा रही हूं, आप बहुत ही दूर नेपाल से यहां पर पधारे हैं, तो बहन विद्या कोइराला, हम तालियों से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन, आप टीचर और सोशल वर्कर हैं, आप सामाजिक संघ सेवा अर्थ कार्य पे तत्पर हैं, आप नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरपर्सन हैं, साथ साथ महिला सहकारी संघ में भी आप चेयरपर्सन के पद पर हैं। आपकी नेपाल चितवन महानगर में आपकी जो सेवाएं हैं महिलाओं के प्रति वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आप इतना दूर से स्नेह भरे निमंत्रण से आप इस माउंट आबू तपोभूमि में महिला प्रभात में पहुंचे हैं, हम आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं और आपको इनवाइट कि आप चंद शब्दों में अपनी शुभकामनाएं दें।
कार्यक्रम संचालक बहन जी, इस विश्व परिवर्तन की नींव सशक्त महिला राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राजयोग शिविर की पवित्र भूमि, ज्ञान भूमि, शांति भूमि, विशाल सभा के समादरणीय सभा अध्यक्ष राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी राजयोग चक्रधारी दादी जी, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन विभिन्न राष्ट्र से पालन होने अतिथि गण, इस अतिथि के रूप में आसन ग्रहण किए हुए दया माया करुणा सागर की खानी शारदा बहन जी, मंचासीन संपूर्ण अतिथि गण, मंचासीन अतिथि गण, इस ऋषि मुनि तपोभूमि श्री पशुपति नाथ की कृपा और आशीर्वाद बाबा का पास में मिलन करने के लिए अवसर दिन होने चितवन ब्रह्म कुमारी राजयोग शाखा का प्रमुख लक्ष्मी दादी जी नवराज भाई जी ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र का प्रमुख संचालक गंगा दादी जी निर्मला बहन जी नेपाल बाट सहभागी संपूर्ण मेरा मातृशक्ति दादी जी बहन जी संपूर्ण में ओम शांति नमन करते हूँ। इस सभा में भारत से एवं नेपाल से यहाँ सहभागी होने के सब लोग में मैं आदर करते हूँ, नमन करते हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा बाबा के प्यार बच्चे हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांति हूँ, स्थिर हूँ, मैं सदा खुशी, मैं निडर हूँ। मैं बाबा के याद में प्रत्येक रोज बाबा के मुरली सुनते हूँ। इस बाबा के आशीर्वाद में इस भूमि में आने जो अवसर प्राप्त हुई है, इसमें मैं आपसे बहुत भाग्यमानी ठानते हूँ। नेपाल में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपाय और पालू है जो नेपाल में महिला और सशक्ति करने में मदद करते हैं। कानून सुरक्षा के हक में नेपाल में कोई कानूनी सुरक्षा उपाय है, जस की हिंसा प्रतिरोध कानून जो महिला और के सुरक्षित रखने में आनंद करते हैं। नेपाल में महिला के सवाल में संविधान सभा में 33% आरक्षण कोटा सुरक्षित हुई, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में महिला शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने कई योजनाएं और प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए हैं। बाल बालिका छात्र और छात्रा महिला के लिए निशुल्क शिक्षा होती है। इसके सम्मान के एक महत्वपूर्ण अवसर है। यहाँ हम एक चर्चा करेंगे कि कैसे हम महिलाओं के सशक्त बनाने सकते हैं, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके और विश्व परिवर्तन में योगदान देना सकते हूँ। जब महिला सशक्त होती है तो ये अपने परिवार और समुदाय को बेहतर बनाने के शिक्षा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था और समाज के सभी क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव सकती है। महिला और को सशक्त बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हूँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन, लैंगिक समानता के क्षेत्र में परिवर्तन, समाज सभी क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन बदलना सकते हूँ। ऐसे आज हम यहाँ विश्व परिवर्तन के नियम सशक्त महिला विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुई है। ये एक ऐसे विषय है जो आज के शाम में अत्यंत महत्वपूर्ण हुई है। महिला ये समाज के आगे आबादी है, यही हम समाज को बदलना चाहते है तो महिला और को सशक्त बनाने होगा। महिला सशक्तिकरण केवल महिला और के अधिकारी के बारे में नहीं है, बल्कि यही एक समावेशी न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के बारे में है। महिला सदैव सही शक्ति और परिवर्तन की प्रतीक रही है। वे जमान जीवन दानी प्रेरणा का स्रोत और समाज की नींव है। सशक्त महिला केवल अपने परिवार में बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। लेकिन आज भी दुनिया भर में महिला और अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लैंगिक भेदभाव, असमानता, हिंसा और शिक्षा अवसर की कमी जैसी समस्याएं महिलाओं की प्रगति में बाधा बनाने है। त्यसैले हम सम्मेलन इस चुनौतियों पर प्रकाश डालने और महिला प्रिय पावर के महत्व बनाने के लिए हम सब महिलाहरू एक होना चाहिए। दूसरो, ब्रह्मा कुमारी और महिला सशक्ति के कारण के है। ब्रह्मा कुमारी महिला सशक्ति कारण एम्पावरमेंट के लिए एक मजबूत आवाज रही है। संगठन, शिक्षा, सेवा और आर्थिक विकास के माध्यम से महिला को सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलता है। ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक सशक्तिकरण परम भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जो महिला और को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में मदद करती है। महिला सशक्तिकरण विश्व परिवर्तन की कुंजी है। जब हम महिला और को सशक्त बनाने हैं, तो हम सब के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। आइए हम सब मिलकर महिलाओं को शक्ति बनाने और एक अधिक न्यायपूर्ण और समृद्ध दुनिया बनाने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप महिला सशक्तिकरण के इस मिशन में शामिल होती है। जहाँ भनिन्छ, जहाँ नारी के पूजा होती है वहाँ देवता की सुख रहती है। जहाँ नारी के पूजन होती है त्यहाँ देवता भी सुख होती है। इस समय में हम नेपाल से विभिन्न सहकारी संघ संस्था में काम करते आगे बढ़ते हूँ। नेपाल में 31,000 सहकारी संघ संस्था होती है, जिसमें 73,00,000 मेंबर होती है। उसमें 56% महिला ओमेन सदस्यता रहती है। यो खुशी के गर्व के कुरा है। जिसमें 44% पुरुष लोग आबद्ध होती है। महिला सशक्तिकरण में जिला में 700 सहकारी संघ संस्था रहते हैं, जिसमें महिला नेतृत्व के भूमिके में अग्र स्थान में होती है। नेपाल में एकमात्र राष्ट्रीय सहकारी महासंघ रहते हैं, उसमें चेयरपर्सन महिला होती है। जैसे चितवन, नेपाल के एक सुंदर शहर चितवन भरतपुर महानगरपालिका में चितवन डिस्ट्रिक्ट सेविंग एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियन, जिसमें हम चेयरपर्सन रहती हूँ। हम नेपाली महिला सब लोग के सेवा करने के लिए हम सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में, न्याय के क्षेत्र में सब काम करते हूँ। महिला संगठन करने के लिए, सब महिला एक होने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण में अगाड़ी बढ़ना चाहते हूँ। उसके लिए सानो सानो पूंजी से महिला के शिपमूलक काम में अगाड़ी बढ़ते के मदद करते हूँ। नेपाल में महिलाहरू एक नेतृत्व क्षमता विकास में आगे बढ़ते हूँ। मैं यहाँ जुन इस सभा में मातृशक्ति नेपाल से 25 यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई वकील, कोई इंजीनियर स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे महिलाहरू एक से एक अगाड़ी बढ़ते हुए, जैसे नेपाल में नारी शक्ति के एक सर्वशक्ति के ज्ञान हुए, त्यसैले यस आज हम यो परमपिता परमात्मा श्री बाबा के आंगन में आने के बाद हम खूब प्रसन्न हुए। इस सभा में आज इस सभा में हम नेपाल से दूर से इस सहभागी होने चाहिए। हमी आत्मसम्मान के इस आयोजक जुन इस आयोजक समिति लाई हमी आभार व्यक्त करना चाहते हूँ। अंतिमा इस कार्यक्रम को पूर्ण सफलता को कामना करने अपने मंतव्य यही विसर्जन करने हूँ। थैंक यू धन्यवाद। ओम शांति। नमस्कार।
ओम शांति। बहुत बहुत आभार हमारी विद्या बहन जी को, जिनके मन में बहुत ही भाव और उद्गार थे हम सभी के साथ शेयर करने के लिए, परंतु समय की सीमा को देखते हुए आपने बहुत ही सुंदर विचार हम सभी के सामने रखे। कहा जाता है ओनली अ वुमेन मेक्स अ हाउस इन होम विथ हर लव। मकान सभी बना सकते हैं, परंतु घर और परिवार सिर्फ महिला बनाती है अपने प्यार से। मिट्टी का मटका व परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती, तोड़ने वाले को नहीं। परिवार जोड़ने के लिए हमारी सोच और हमारी आदतें बहुत ही अच्छी हो। परिवार जोड़ के रखने के लिए सैक्रिफिकेशन चाहिए, त्याग वृत्ति चाहिए। जो त्याग की भावना परमात्मा ने स्वयं नारी के अंदर बढ़ी है, एक नारी शक्ति है जो जीवन के हर परिस्थिति पर सैक्रिफाइस करती है। सैक्रिफाइस होना निर्बलता नहीं, शक्ति की निशानी है। और ऐसे शक्ति स्वरूपा हमारी डॉक्टर सविता बहन, जो इस महिला प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ कि वह इस महिला प्रभाग की सेवा की गतिविधियों से आपको परिचित करें। डॉक्टर सविता बहन 74 से ब्रह्माकुमारी संस्था के संपर्क में आई और 89 में आपने संपूर्ण रीति से मानव जाति के लिए अपनी सेवाएं दी। आपने डॉक्टर की डिग्री राजस्थान यूनिवर्सिटी से ली है और कुछ साल आपने अपनी मेडिकल सेवाएं भी दी। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आपने 2000 से 2007 तक जो इस संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका, उनके साथ साथ आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रहे। आपने इस महिला प्रभाग की सेवाओं में 4 चांद लगाए हैं। जो भी भारत सरकार की तरफ से योजनाएं बनती है, अभियान बनते हैं, जैसे नारी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब अभियान में आपकी अहम भूमिका रही। देश भर में ये अभियान चलाने के लिए आप विशेष कोऑर्डिनेटर के रूप में रहे। आपने विदेश में भी अपनी सेवाएं दिया है और इन सब सेवाओं के कारण ग्लोबल अलायंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट से आपको वुमेन ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी डॉक्टर सविता बहन।
ओम शांति। ओम शांति। मंचस्थ आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, आदरणीय शारदा दीदी, भ्राता मोहन सिंगल जी, बहन डॉक्टर विजाता आर्य जी, बहन पूर्वी भावे जी, बहन नेपाल से पधारी हुई विद्या कोइराला जी, बहन पुष्पा और जोधपुर से पधारी हुई हमारी मेयर बहन, और सभा में उपस्थित भारत और नेपाल से आए हुए सभी नारी शक्ति और हमारे भाई, आज आप सभी के स्वागत का दिन है। तो सबसे पहले तो मैं आपके स्वागत में कहूंगी, गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं, इस हार्मनी हॉल की शान में चार चांद लग गए हैं जो आप सब यहाँ पधारे हैं। तो जैसे कि आपने सुना, इस विद्यालय में अनेक प्रभाग हैं, लगभग 20 प्रभाग हैं जो अनेक व्यवसायों की सेवा से संबंधित हैं। उनमें से एक महिला प्रभाग है जो महिलाओं के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपने लगभग 40 वर्षों से तत्पर है। आज हम देखते हैं कि सरकार की ओर से भी और अन्य गैर सरकारी संस्थान भी महिला सशक्तिकरण के प्रयास करते हैं, और उसके कारण आज महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है समाज में। उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, उनको सामाजिक रूप से अधिकार भी मिले हैं, आर्थिक रूप से भी वो आत्मनिर्भर बन रही हैं, राजनीति में उनकी सक्रियता भी अब बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अभी भी उनका उचित सम्मान और बराबर की भागीदारी नहीं है, कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। आज भी कन्या भ्रूण हत्या होती है, दहेज की समस्या भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का आंकड़ा हर वर्ष बढ़ता जाता है। तो इसका मूल कारण जो है वो है कि महिलाओं के प्रति मानसिकता में पूरी तरह से परिवर्तन नहीं आया है। जो सदियों पुरानी मानसिकता चली आ रही है हमारी भारतीय संस्कृति में, तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा ही हम ये परिवर्तन ला सकते हैं, और महिला प्रभाग के द्वारा इसी लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर के हर वर्ष अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मुख्यालय में ही 2 या 3 कार्यक्रम, उसमें सम्मेलन, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं, और आज का जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है ये उन्हीं कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। और अब तक मुख्यालय में लगभग 40 ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। पारिवारिक मूल्यों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय प्रति समय आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि परिवारों में कलह का वातावरण है, अशांति रहती है, क्योंकि संबंधों में स्वार्थ बढ़ता जा रहा है और नई पीढ़ी के नैतिक मूल्यों में बहुत तेजी से गिरावट आई है। परिवार टूटते जा रहे हैं, आपस में जो स्नेह, सम्मान, सहयोग की भावना होनी चाहिए, जो मधुरता, नम्रता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसकी कमी होती जा रही है। तो इनको कैसे उनके अंदर विकसित किया जाए ताकि परिवार के हरेक सदस्य की उन्नति हो और वो सफलता को प्राप्त करें, समाज में, परिवार में एक व्यवस्था हो, स्वच्छता हो, ऐसा वातावरण हो कि जीवन में सुख शांति हो। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। ये विशेष दिवस है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, और इस अवसर पर हमारे सभी सेवा केंद्र, जो भी भारतवर्ष के सेवा केंद्र, भारतवर्ष के ही नहीं विदेशों में भी, जैसे बताया 140 देशों में विद्यालय के सेवा केंद्र हैं, लगभग 8000 सेवा केंद्र हैं। तो सभी सेवा केंद्रों के द्वारा स्वतंत्र रूप से या महिला संगठनों के साथ या महिला क्लबों के साथ मिलकर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उस हमेशा उसकी एक थीम होती है और उस थीम को लेकर के कैसे महिलाओं में जागृति लाई जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए, ये प्रयास किया जाता है। महिला प्रभाग की एक समाचार पत्रिका है नारी शक्ति, जो त्रैमासिक पत्रिका है और उसमें राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सेवाएं होती हैं उसके समाचार प्रकाशित किए जाते हैं और साथ साथ महिलाओं से संबंधित कोई ना कोई लेख जो उनके लिए उपयोगी है ऐसा लेख भी उसमें होता है। ऐसे ही महिलाओं की सेवा के लिए एक 13 चित्रों की चित्र प्रदर्शनी महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण नाम से बनी हुई है, क्योंकि जब हम कस्बों में गांव में महिलाओं की सेवा करना चाहते हैं तो फिर सुगमता से वो विषय को समझ सकें तो चित्रों के माध्यम से उनको वो समझाया जाता है और उसका एक लिखित स्पष्टीकरण की भी एक पुस्तक बनी हुई है। समय प्रति समय महिला प्रभाग के द्वारा बीते कई वर्षों में अभियान निकाले जाते रहे हैं। सन 2001 जो भारत सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था उस समय अखिल भारतीय स्तर पर महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान निकाला गया जो भारत के 9 बड़े शहरों से निकाला गया। बैंगलोर से उसका शुभारंभ हुआ, फिर मुंबई, नागपुर, पोरबंदर, सिंगरौली, इलाहाबाद, कांगड़ा, वैष्णो देवी आदि, ये सब 9 शहरों से वो भारत के लगभग 14 राज्यों से होता हुआ, राज्यों में भी शहरों में कस्बों में गांवों में महिलाओं के अनेक कार्यक्रम उनके सशक्तिकरण के लिए आयोजित किए गए और उसका समापन दिल्ली में नवंबर 2001 में तालकटोरा स्टेडियम में किया गया, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने भी भाग लिया और जो हमारे देश की प्रथम महिला आईपीएस जो उस समय पुलिस कमिश्नर थे किरण बेदी जी वो भी शामिल हुए और उन्होंने सभी महिला अभियान यात्रियों का सम्मान किया, उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। तो उसके जो विषय लिए गए भारत सरकार द्वारा घोषित विषय थे नैतिकता, शांति, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। समाज और परिवार में नैतिकता और शांति की स्थापना में महिलाओं का योगदान क्या हो, कैसे हो, ऐसे ही उनमें शिक्षा को बढ़ावा देना और उनमें छिपी शक्तियों का बोध उनको कराया जाए, स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी उनको हो। ये भी देखा जाता है कि महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान तो रखती हैं लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाती हैं। और बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, क्योंकि ये देखा गया कि बेटियों की जो संख्या थी उसमें काफी अंतर आ रहा था बेटों की तुलना में, तो फिर उन्होंने इस अभियान का आगाज किया और उसी अभियान को सपोर्ट करने के लिए बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान लगभग 2 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष में उसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम किए गए। नारी सुरक्षा अभियान निकाला गया जब हमारे देश में एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई जो दामिनी की हम बात करते हैं, नई दिल्ली में वो घटना हुई जिसने पूरे विश्व के आगे ना भारत के सिर को झुकाया। तो विदेशों के सेवा केंद्रों के द्वारा ही हमें ये सुझाव मिला कि हम एक ऐसा अभियान भारत में निकालें। तो उस अभियान का ये उद्देश्य था कि परिवार समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागृति लाना, साथ में उन्हें स्वयं की सुरक्षा के लिए भी सशक्त बनाना और जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, सार्वजनिक स्थलों पर भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जन जन में जागृति आए, और ऐसे स्रोत जो मानव मन के विचारों को उत्तेजित करते हैं, चाहे वो अश्लील साहित्य है, फिल्में हैं, विज्ञापन है, उनको प्रतिबंधित करने के लिए जागृति लाना, तो ये सब इस अभियान के उद्देश्य लिए गए। जब कोरोना का समय था, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल रूप से नए भारत की ध्वजवाहक महिला, ये इस अभियान का शुभारंभ किया, और अभी बीते वर्ष ही 2023 में माननीय प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू जी ने पारिवारिक सशक्तिकरण अभियान का ORC जो दिल्ली में अपना एक रिट्रीट सेंटर है वहां पर उसका शुभारंभ किया। तो कैसे परिवारों को भी हम सशक्त बनाएं और परिवारों में वो सुख शांति का माहौल हम बना सकें, उस विषय को लेकर के पूरे भारत में अनेक कार्यक्रम पूरे 2023 में किए जाते रहे। तो इस तरह से महिला प्रभाग अपने इस उद्देश्य को लेकर के कि महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो, केवल शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ही नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी हम सशक्त बने, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से सशक्त होते ही अन्य सभी क्षेत्रों में भी हम स्वयं ही सशक्त होने लगते हैं। और जैसा कि शारदा दीदी ने बताया कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रशासन मुख्य रूप से तो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। जब से इसकी स्थापना हुई 1936 में, तब से प्रजापिता ब्रह्मा जो परमात्मा शिव के माध्यम बने, उनका एक विजन था ये, और उसी के परिणाम स्वरूप माताओं बहनों को ही ये ज्ञान का कलश प्रदान किया गया, और वर्तमान में 40,000 समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहने हैं जो पूरे देश विदेश के सेवा केंद्रों का संचालन कर रहे हैं, और जो भी घर ग्रस्त में रहने वाले हैं, साई जीवन को जीने वाले भाई बहने, लाखों भाई बहने हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनके निर्देशानुसार ही वो अपना जीवन चलाते हैं। अध्यात्म हमें ये समझ देता है कि हम केवल शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है, क्या है तो वो स्त्री है, और अगर आत्मा ने पुरुष शरीर लिया है तो वो पुरुष है। एक जीवन के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाती है, और इसीलिए आपस में स्नेह, समानता और सम्मान का व्यवहार हम देखते हैं। हालांकि पुरुष भी इस कार्य में बराबर के सहयोगी हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार या शोषण यहाँ पर हम नहीं। तो ये है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी जो है आज हमारे समाज में यही है कि वो दृष्टियों का परिवर्तन हम ला सकें, और कार्य इस आध्यात्मिक ज्ञान और सहज के द्वारा इस विश्व में कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा इस सम्मेलन का विषय है, विश्व परिवर्तन की नींव, सशक्त महिला, तो जब हम आत्मिक रूप से सशक्त होते हैं, आध्यात्मिक रूप से सशक्त होते हैं, तो स्वतः ही हम स्वयं में भी परिवर्तन ला पाते हैं, और इस विश्व को परिवर्तन करना भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। तो जैसे कि इस विद्यालय में अनेक बहने हैं, वो इस कार्य को कर रही हैं, और आज आप भी यहाँ इस सम्मेलन में पधारे हैं, तो आप सबसे भी शुभ आशा, शुभ अपेक्षा है कि हम भी इस परिवर्तन के कार्य में स्वयं में परिवर्तन लाकर, यानी स्वयं की मानसिकता में परिवर्तन लाकर के इस परमात्मा कार्य में सहयोगी बनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन जो विद्यालय के द्वारा सेवाएं की जाती रही हैं उसकी झलकियां आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से 2-3 मिनट में दिखाया जाएगा।
सेवाओं की एक झलक। नई दिल्ली में 27 मई को वर्तमान संकट काल में महिलाओं की भूमिका विषय पर एक वुमेन कन्वेंशन रखा गया और पारिवारिक सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 9 फरवरी 2023 को हुआ, जिसमें 722 कार्यक्रम हुए। 1,48,257 लोगों ने इससे लाभ लिया और ये विभिन्न सेवा केंद्रों द्वारा इस अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम हुए उसकी झलकियां हम देख रहे हैं। ये इंदौर का है, फिर तेलंगाना में तो राज्य स्तरीय एक महीना अभियान चलाया गया जिसका शुभारंभ हैदराबाद में हुआ। विभिन्न जिलों में हुए कार्यक्रम और समापन इसका 16 सितंबर को हैदराबाद में ही किया गया। अगस्त 2023 को ज्ञान सरोवर में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। शांतिवन में भी 9 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। संबलपुर ओडिशा में भी ये कार्यक्रम हुआ और फिर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल ओपनिंग की वुमेन द फ्लैग बेरर ऑफ इंडिया। बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान 2016-18 में प्रारंभ किया गया। कथक में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो उस समय गवर्नर थे झारखंड के, वो पधारे थे। उसमें ये विभिन्न कार्यक्रम जो अनेक शहरों में किए गए। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए भी एक अभियान हुआ, ओआरसी में उसका शुभारंभ किया गया। नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान 2014-15 में पूरे भारतवर्ष में निकाला गया, उसके अंतर्गत हुए जो भी कार्यक्रम है उनकी झलकियां। ऊना, पोरबंदर, जबलपुर, इंदौर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी सेवा केंद्र स्वतंत्र रूप से या संगठनों के साथ मिलकर के अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे महिलाओं में जागृति लाई जा सके। रायपुर, कोलकाता, वारंगल, नोएडा, कोरबा, पटना, गोवा, मुंबई, इंदौर, नागपुर, जम्मू, सोनीपत, काफी कार्यक्रम होते हैं। भारत के लगभग सभी बड़ी शहरों में ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मदर्स डे पर भी हर वर्ष सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वो परिवार को स्वस्थ और सुखी कैसे बनाएं इसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। बहनों को उनके कार्यों के लिए, सेवाओं के लिए समय प्रति समय सम्मानित किया जाता रहा है। उसमें से कुछ अवार्ड
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी, अपनी विशाल और भव्य सेवाओं को सार रूप में सुनाकर कि ये महिला प्रभात किस प्रकार से अपनी देश भर में सेवाएं दे रहा है, आपने हम सभी को उससे परिचित कराया। अब और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे मंच पर विराजमान हमारी बहन डॉक्टर विजेता आर्य, आप डायरेक्टर ऑफ कायाकल्प योगा और नेचुरोपैथी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट हरियाणा से आप आए हैं। आपको 25 सालों से पुरानी बीमारियों को कैसे हैंडल करना है इसका बहुत ही सुंदर अनुभव है। आप एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बेटी हैं जिनका नाम है डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्या, जिसे हरियाणा सरकार के द्वारा विषम पितामह पुरस्कार से और साथ में बालकोवा बावे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने कोरोना पीरियड में 25 पेशेंट्स को नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट देकर आपने उस बीमारी से उन्हें रिलीफ किया। इस कारण वहां की यूनिवर्सिटी ने आपको 3 वर्ष तक वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रोल मॉडल पुरस्कार देकर आपको नवाजा है। आप सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए महीने में 4 क्लासेस चलाती हैं नेचुरोपैथी की। आपने अपनी कर्मी सेना में महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को आप सुशोभित करती हैं। ऐसी वक्तव्य को मैं इनवाइट करती हूँ हमारी डॉक्टर विजेता आर्य, चंद शब्दों में वह अपनी शुभकामनाएं दें।
एक लंबा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ शांति। भोजन का समय होता जा रहा है और सभी लोग टाइम देख रहे हैं, तो मैं बहुत थोड़े में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब सब तुम्हारा हृदय तोड़ दें, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दें, तब तुम मधुबन में आना प्रिय, इसका दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। संयमशील बना जीवन कुंदन सा इसे निखारूंगी, दुनिया वालों सुनो धरा पर मैं अवतार उतारूंगी। बोलने के लिए बहुत सारा वक्तव्य था लेकिन समय सीमा बहुत थोड़ी है और मैं बहुत इम्पोर्टेंट ही बातें आपको बताऊंगी। आज यहाँ महिलाओं का सत्र चल रहा है और महिलाओं से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। बीइंग ए योगा नेचुरोपैथी डॉक्टर, मैं योग में नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अभी 18 तारीख को मेरा यूएस में न्यूयॉर्क में भी प्रोग्राम है स्वामी रामदेव जी के साथ। मुझे मौका मिला 2 साल पहले भी यहाँ अपना वक्तव्य रखने का, दीदी पहचान गई, बोली आपको देखा है कहीं, तो 2 साल पहले भी मैं यहाँ आई। हमारे भाई विनोद भैया और मीना दीदी का मैं धन्यवाद करूंगी कि ऐसी जगह से मुझे परिचित करवाया। देवासुर संग्राम के संक्रमण युग में नारी शक्ति एक अलौकिक ऊर्जा के रूप में उभरी है और इसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने तपस्विनी, योगिनी, वेदिनी, ये जो माताएं हैं, बहनें हैं, ये साक्षात प्रमाण है कि इतनी अपार संख्या में इन्होंने युग परिवर्तन का कार्य बहुत बड़े स्तर पर शुरू कर रखा है। इसके लिए मैं हमारे मार्गदर्शक सारे भाइयों का, बहनों का, अपनी दीदियों का हृदय की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जब हम कहते हैं नारी शक्ति तो कितनी बड़ी बात लगती है और हमारे वेदों में कहा गया नारी ही ब्रह्मा बभूवित है, कि नारी तो ब्रह्मा है, रचिता है, क्रिएटर है, लेकिन कई बार वही नारी निराश हो जाती है, दुखी हो जाती है, घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक जाती है। ऐसे में क्या करें? तो सबसे पहले तो हमें रास्ता हमारी दीदियां रोज सुनाती हैं मुरली के अंदर, वो सुनना शुरू कर दें। और उसके बाद दूसरा काम ये करें कि अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से समर्थ बनाएं। उसका तरीका क्या है समर्थ बनाने का? आज हम कहते हैं हमारे परिवार में मेरी सास अच्छी नहीं, मेरा बेटा ठीक नहीं, मेरा ये एक्सपायर हो गया, मैं इसलिए डिप्रेशन में चली गई। मोस्टली बहनों की यही कहानियां होती हैं कि घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं। माता देवकी का नाम सबने सुना होगा, कृष्ण जी की माता, सुना सभी ने, जिसके साचों को उसके सगे भाई ने मार दिया हो, ऐसी माता ने कृष्ण को जन्म दिया। क्या दुखों की पराकाष्ठा नहीं लगा सकते। माता कौशल्या जिसके बेटे को वन वन में भटकने के लिए छोड़ दिया गया हो, ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं कि संघर्ष बिना जीवन में कोई चाह नहीं होती और कांटों से खाली कोई राह नहीं होती। वह सुख सच्चा सुख नहीं जो बिना कष्ट के मिल जाता है। हम सोचे हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, हमने क्या बुरे कर्म किए, कष्ट आना तो अवश्यंभावी है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, जब आप सच के रास्ते पे चलेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे। वह सुख सच्चा सुख नहीं जो बिना कष्ट के मिल जाता है, संघर्षों से निखर निखर कर जीवन का रस आता है। किसने कहा गुलाब को कि कांटों में खिलना होगा, किसने कहा कमल को दलदल में मचलना होगा। नमन करूं चंदन को सांपों में सुगंधि देता, धन धन ऋषि दयानंद विष पीकर अमृत बांटा। जग का उद्धार करो बेटा माँ कौशल्या ही कह सकती है, और कंस का वंश मिटाने को देव की जेल यातना सहती है। बेटे को पीठ पे बांध लक्ष्मी रण के बीच मचलती है, और 17 बार जहर पीकर ऋषि दयानंद की जान मचलती है। इसलिए जब भी कोई महान कार्य होगा, आप क्या सोचते हैं ये इतना बड़ा मधुमन बनाना, इतना सारी सेवाएं देना, कैसे चल रहा है ये सारा कार्य? उस ईश्वर की कृपा से। इसलिए उस ईश्वर की परमपिता की कृपा को अपने भीतर हर समय महसूस करें। मैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं तो कड़वे काढ़े पिलाती हूं सबको। हमारे जिंदल भैया तो आते हैं, कहते हैं आप तो हमें यहाँ पे आके कड़वा कड़वा पिलाते हो, हम यहाँ आते हैं तो हमारी बड़ी सेवा होती है। मैं बड़ी खुश होती हूँ, मैं अपने साथ दो नेचुरोपैथी की साधिकाओं को भी लेके आई हूँ, ये बहुत खुश हो गई। कहती हैं दीदी आप तो अपने यहाँ पे बहुत कड़वा कड़वा खिलाते हो, यहाँ तो बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है और बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। तो मैं कहती हूँ थोड़ा कड़वा भी जरूरी है लाइफ में। बहुत हो चुका, अच्छी अच्छी बातें हम बहुत अच्छी अच्छी सुनते हैं, लेकिन आज फटकार लगाने आई हूँ ऐसी माताओं को जो अपने बच्चों की हत्यारन बन बैठी है। आज माता रही कहाँ है, मम्मी बन गई है अब तो। जो माँ सुबह बच्चे को जल्दी नहीं उठाती, हमारे यहाँ ये गालियां होती थी कि जो माँ अपने बच्चे को सुबह जल्दी नहीं उठाती वो अपनी माँ बच्चे की हत्यारन है, जो माँ अपने बच्चे को सुबह चाय देती है वो माँ अपने बच्चे की हत्यारन है। माता अरुंधति, जब हम इनके दुर्गा सावित्री सीता अहिल्या कौशल्या इनका इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा लगता हमारे जीवन में कोई दुख नहीं थे। तो ऐसी माताएं जो घर परिवार के अंदर, अब सुन ले तू महतारी मत बन बच्चों की हत्यारी, चाय चीनी चॉकलेट से मत कर इनकी खुआरी, फूल सा बचपन खिलेगा इनका जो तू योग कराए, जल्दी सोना जल्दी जगना इनको जो सिखलाए, सब घर जपे ओम का जाप उठते ही कर ले प्राणायाम, मिट जाए सब बीमारी, अब सुन ले तू महतारी मत बन बच्चों की हत्यारी, चाय चीनी चॉकलेट से मत कर इनकी खुआरी। माता अरुंधति नदी के तट पर बैठी हुई थी और अचानक उनका अंग वस्त्र उड़ जाता है। वहां पे ऋषि बैठे हुए थे, उनको देख करके कहने लगी कि ऋषि का अंग वस्त्र उड़ गया, तो माता अरुंधति से बोले कि आपने हमारा अंग वस्त्र लिया है। तो उस समय माता अरुंधति कहती हैं कि जो देर से उठने वाले को पाप लगता है वो मुझे लगे, जो कमजोर संतान पैदा करने वाली माता को लगता है वो मुझे लगे अगर मैंने आपका अंग वस्त्र लिया हो तो। ये महान पराकाष्ठा थी। आज हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही बीमार हैं, खुद ही लाचार हैं। आज की माता अपने बच्चों को सुबह उठ करके टॉफी चॉकलेट बर्गर पिज्जा चाय समोसे इस तरह का नाश्ता जो करवाती हैं, तो वो हत्यारन है अपने बच्चों के। आज यही कहूंगी कि हमारा जो इतिहास है वो साक्षी है, और आज हमारे बीच में जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू है वो हमारे सामने साक्षात इसका उदाहरण है कि योग और ध्यान के बल पर आप कितने ही बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। देवियां ही देश धर्म जाति को बचाया करती हैं, आन बान और शान की खातिर जान गंवाया करती हैं, समय समय पर नारी जाति ने गौरव के काम किए, बल में अकल में भूमंडल में सभी जगह सरनाम किए, चूड़ी खनकते हाथों में तलवार बजाया करती हैं, देवियां ही देश धर्म जाति को बचाया करती हैं। आज सुबह जब हम गाड़ी में बैठे थे तो यहाँ एक न्यूली कपल आया हुआ है, एक बार खड़े हो जाए दोनों भाई बहन, मुझे बहुत अच्छा लगा इनको देख करके, इनकी अभी अभी शादी हुई है और ये यहाँ पे आए। मैं हर यहाँ पे बैठी हुई माता को कहती हूँ कि अपने बच्चों को शादी से पहले या शादी के बाद में 7 दिन का कोर्स जरूर करवाएं, राजयोग का कोर्स और साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स हर व्यक्ति को सीखना चाहिए अगर स्वर्ग में रहना चाहते हो जीते जी। क्या होगा, शादी हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, इधर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो अपंग पैदा हो रहे हैं, कुड़ौल पैदा हो रहे हैं, जन्मजात विकृतियां लेकर के पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रेनिंग तो ली नहीं। अब मुझे बताइए, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, जो भी प्रोफेशन में हैं, एक डिग्री चाहिए होती है, एक ट्रेनिंग चाहिए होती है, लेकिन हम गृहस्थी बन गए, हमें नहीं पता बच्चे कैसे पालने हैं, बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, हमें नहीं पता। यहाँ राजयोग करते हुए भी हम पहले ट्रेनिंग लेते हैं कि हमें पहले ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, उसके बाद ही हम किसी को बता पाएंगे। लेकिन अब बाई चांस बच्चे पैदा हो रहे हैं तो क्या होगा, नपुंसक, हिंसात्मक। इसलिए हमने एक अभियान चलाया हुआ है, नस्ल बदलो अभियान। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर बच्चे को शादी से पहले ट्रेनिंग दी जाए, अध्यात्म की, शारीरिक शिक्षा की, प्राकृतिक चिकित्सा की, और वो ट्रेनिंग आज आपकी यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं शादी के बाद, मैं इनको अभिवादन करना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों को हम अध्यात्म में लाएं। हम कहते हैं बुढ़ापे में राम का नाम ले लेंगे, कुछ नहीं होगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को शुरुआत कीजिए कि वो मुरली सुने, और इस तरह से प्रोग्राम जब भी बच्चों का हो तो उनको भेजें। अपने घर से शुरुआत कीजिए। हम चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन कहाँ, पड़ोस के घर में। हम अपने बच्चों को बनाएं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गृहस्थियों की। दीदी अपना पूरा सर्वस्व न्योछावर करके हम लोगों को जो ज्ञान दे रही है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी इसको पूरा करें, हम भी उसको दिलो जान से अपनाएं और अपने बच्चों से शुरुआत करें। मैं अक्सर, बहुत कड़वी बात लगती है लोगों को, मेरे पास सेंटर में जब रेजिडेंशियल नेचुरोपैथी सेंटर चलाती हूँ मैं, और जो असाध्य रोग होते हैं, जो कहीं ठीक नहीं होते, डायलिसिस के हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, कैंसर के हैं, वो लोग वहां रह करके इलाज लेते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि जब आप बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते थे, उन्हें अच्छा ज्ञान नहीं दे सकते थे, शरीर का ध्यान कैसे रखना है ये नहीं बता सकते थे, आपने बच्चे पैदा क्यों किए? इससे आज अच्छा ब्रह्मचारी रहते, अपने जीवन का तो उद्धार करते, लेकिन आपने तो अभी दो बच्चों का और सत्यानाश कर दिया है। ये बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन वास्तव में सच है कि जननी जने तो भक्त जन याद आता या शूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाहे नूर। और आज वो बच्चा जिसके बारे में हम हर समय शिकायत करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते जी, घिया तोरी की सब्जी खाते नहीं है जी, हम तो चल रहे हैं योग में लेकिन बच्चे फॉलो नहीं करते, आप खुद करना शुरू कीजिए, बच्चे अपने आप फॉलो करेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, किस तरह का आचरण कर रहे हैं, हम उनके सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बच्चा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, वो एकदम से ऐसे गीली मिट्टी, उसको जो सिखाते हैं वो सीख रहा है। लेकिन हमने अपने जीवन में क्या किया है, ये अब भाषणबाजी नहीं चलेगी, आपका जीवन स्वयं कहेगा। मंच से क्रांति की घोषणाएं हुई, शब्द से शांति की व्यंजनाएं हुई, क्रांति आई नहीं शांति ठहरी नहीं, मंदिरों में बहुत प्रार्थनाएं हुई, जिंदगी से जगे क्रांति चिंगारियां, आत्मा से खिले शांति फुलवारियां, पूर्वजों के चरित्र की दुहाई न दो, प्रज्वलित स्वर्ण पहचान देते चलो, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो। आज बच्चा पता है क्या कर रहा है, हमारी तरफ उंगली उठा के कहता है, क्योंकि माता पिता बैठे हैं ड्रिंक लेकर के, माता पिता बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, माता पिता गलत आचरण कर रहे हैं, बच्चे को कैसे आप राम बना दोगे? कि तेरी उंगली पकड़कर सीखा है चलना, और तेरी ही गोद में पले हैं हम, तू मत कहे हमें बुरा दुनिया, तूने ढाला है और ढले हैं हम। तो ढालने वाले हम हैं, जितनी माताएं हैं, जितने पिता आज यहाँ पे आए हैं, ये इस बात को ग्रहण करके जाएं कि हमारा आचरण ही बच्चों का आचरण होगा, और जैसी हमारी थर्ड जनरेशन होगी, मेरा एक नारा है सेव योर थर्ड जनरेशन, वैसा हमारा देश बनता चला जाएगा। मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए, और इतने अच्छे स्वर्ग, मैं तो रोज अपने व्हाट्सएप पे सभी को लिख रही हूँ कि मैं स्वर्ग में हूँ आजकल, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, इतने पेशेंट्स के फोन आ रहे हैं, मैंने कहा बस मुझे थोड़े दिन स्वर्ग का आनंद लेने दीजिए, क्योंकि वास्तव में जब हम घर परिवार से थोड़े दिन के लिए छूट जाते हैं, अपने हॉस्पिटल से छूट जाते हैं, तो हमें ये स्वर्ग की अनुभूति होती है। वास्तव में बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है, बहुत सुंदर यहाँ दीदियों की सेवाएं हैं, देख के मन गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो मैं हर साल आने की कोशिश करती हूँ कि कम से कम महिला विंग के प्रोग्राम में हर साल मैं यहाँ पे आऊँ। दीदी का, भाई लोगों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन विजय आर्या का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें, ओम की ध्वनि से पहले आप सभी को नेचुरोपैथी का अभ्यास कराया, क्योंकि आत्मा का पहला नेचर ही है स्वतः स्वरूप में टिकते शांति का अनुभव करना। अब हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पे खड़े हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हमने परमात्मा की याद से की और उस कार्यक्रम की समाप्ति हम हमारी आदरणीय दीदी के आशीर्वचनों से करेंगे। जी, हम सबके बीच में मंच पर एक और हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं, जोधपुर से आई हुई हमारी मेहर बहन वनीता सेठ। मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ कि आप भी चंद शब्दों में अपना शुभकामनाएं दें। आप मेयर हैं जोधपुर में, जोधपुर शहर से आप आए, संस्था से आप बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं, बहनों के स्नेह भरे निमंत्रण से आपने यहाँ पहुंचकर इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत 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 अभिनंदन है बहन।
सम्मानित मंच, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी शील दीदी को, वो करीबन 10-15 बार मुझे बुला चुकी थी पर मैं कोई ना कोई कारण से आ नहीं पाई, और इस बार इन दीदी ने कहा और मैंने अभी उनको बोला यहाँ के कि मेरे को अच्छा लगा और पहली बार मैं यहाँ आई हूँ। तो दीदी से तो एक तो माफी चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी बार बोला, पर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता रहा कि मैं आ नहीं पाई। आज आपका विषय विश्व परिवर्तन की नींव, सशक्त महिला। सबने अपने विचार रखे और इनके बोलने के बाद लगता नहीं है कि मुझे बोलना चाहिए, वैसे भी मैं राजनीतिक क्षेत्र से हूँ, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जब हम ये छोड़ देंगे कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, उस दिन महिला सबसे ज्यादा सशक्त है, क्योंकि ये वही देश है जहां पे देवियों की पूजा होती है, और ये वही देश है कि नारी यहां पे हमारे वेदों में जो महिलाओं को सम्मान था वो और कहीं दुनिया में नहीं है। और वैसे भी भारत का ये कहा जाता है कि आने वाला समय विश्व गुरु बनेगा और उसमें हमारी महिलाओं का रोल सबसे अधिक होगा। और जब मैं हमारे जोधपुर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं अधिकतर मैं उन कार्यक्रमों में जाती हूँ, सबसे बड़ा अच्छा ये लगता है कि मंच पे हमेशा महिलाएं होती हैं और सुनने वाली भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो आ रही हैं और पिछले 2-2.5 घंटे से बिल्कुल चुपचाप सुन रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ तो आत्मसात हो रहा है और उससे कुछ निकलेगा, उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में इन दीदी को भी कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और हमें बुलाया। थैंक यू,
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन विनीता जी। आपने समय की सीमा का ध्यान रखते हुए चंद शब्दों में अपनी शुभकामनाएं दी। अब मैं नम्र निवेदन करती हूँ हमारी आदरणीय सम्माननीय मंच पर सुशोभित हमारी राजूटनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी, हम सब तालियों से बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। दीदी जी, आपका जन्म 1942 में हुआ है, आपने पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है, 1962 में आपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने आप को मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। दीदी का परिचय देना ऐसा है कि सूर्य के सामने आईना दिखाना है, आप देख रहे हैं, मैं समझती हूँ दीदी 80+ हैं और हम सबके सामने एक मूर्ति की तरह विराजमान है। मूर्ति जो है वह दृष्टि भी देती है, मुस्कुराती भी है और आशीर्वाद भी देती है, तो अब जो कार्य रहा हुआ है वो है आशीर्वाद देने का, तो मैं दीदी को इनवाइट करती हूँ कि आप अपने आशीर्वचन से हमारी जो आई हुई महिलाएं हैं वह विश्व परिवर्तन की यहाँ से नींव बनकर जाए, ऐसे प्रेरणा वचनों से आप लाभान्वित करें। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी,
ओम शांति। आप सब भी बोल सकते हैं ओम शांति। आपने देखा होगा यहाँ जो भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको कह देते हैं ओम शांति, और वो भी आगे से रिस्पांस देते हैं ओम शांति। क्योंकि ये वो शांति का स्थल है जहाँ चारों तरफ शांति का वातावरण ही क्रिएट किया जाता है। और ओम शांति का तात्पर्य ही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और अन्य आत्मा भी रिस्पॉन्स देती है मैं भी शांत स्वरूप हूँ। और सचमुच अगर मैं भी शांत हूँ और आप भी शांत हैं तो आप अनुमान लगाइए वातावरण कैसा होगा। कई कहते यहाँ का वातावरण में बहुत शांति है, भवन तो वही चीनी वही रेती और वही सीमेंट वही ईंटें वही भद्रपुर उन्हीं चीजों से बना है, लेकिन इस भवन में जो वाइब्रेशंस हैं वो आप और हम सब के वाइब्रेशंस जो इस स्थान की महिमा को बढ़ाते हैं। क्योंकि आज के विषय पर आप सब वक्ताओं से बहुत सुंदर सुन रहे हैं, मुझे तो आशीर्वाद का ही आज कार्य मिला हुआ है। हम देखते हैं कि महिलाओं का अगर सशक्त महिला इस विश्व की परिवर्तन करने में एक नींव का कार्य कर सकती है तो परमात्मा पिता ने महिलाओं को अग्रिम रोल दिया कि मेरा कार्य सृष्टि की स्थापना है और तुम्हारा कर्तव्य भी स्थापना का है। ऐसे विश्व की स्थापना करो जिस विश्व में शांति सुख शक्ति और आनंद। मैं ऐसा कहूंगी कि अगर एक महिला सशक्त है गुणवान है वह परिवार की ऐसी धुरी कहला सकती है जो सारे परिवार का नक्शा बदल दे। जिसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। एक स्थान पर चार भाई थे और चारों ही भाई मजदूरी का काम करते थे, सुबह सुबह काम पर चले जाते और शाम को काम से वापस आते, परंतु मजदूरी में कुछ पैसा नहीं लेते, केवल गुड़ और चने लेकर आते और वो गुड़ चने खा करके अपने जीवन का सर्दी और गर्मी में गुजारा करते। रात को कहीं सोकर कहीं रहन बसेरे में या कहीं पटरी पर सोकर रात बिता देते और सुबह होते ही काम पर चले जाते। लेकिन बड़े भाई की शादी हुई, शादी में जब लड़की लेकर आए जैसा स्वयं जीवन जी रहे थे वैसे ही जीवन उसको जीने की प्रेरणा मिली। लेकिन वो ऐसी सशक्त महिला थी कि जब कमाकर वापिस आए और चने और गुड़ उनको थमा दिया तो कहा पैसे कहाँ हैं, कहा पैसे नहीं हम लेते क्योंकि खाना ही गुड़ और चने हैं, कौन जाएगा बाजार में पैसों से खरीद के लाएगा, हम तो लेते ही चने और गुड़ हैं वही खाते हैं। कहा नहीं कल आप पैसे ही लेकर आइएगा, चने और गुड़ नहीं लाइएगा। और वो पैसे चारों भाई अच्छी रकम लेकर आए और लाके उसके हाथ में थमा दिया, कहा बताओ खाएंगे क्या। तब उसने कहा आप थोड़े चावल खरीद के लाओ, मैं आज चावल बना के आपको खिलाऊं। तीन ईंटें रखी, बर्तन थोड़े घर में पड़े थे, चावल बनाया और पेट भर तीनों चारों भाइयों ने उस औरत सहित सभी ने खाकर पेट भरा और काफी पैसा बच गया। उन्हें प्रतिदिन उसने यही आदेश दिया, जहां भी काम करो लेकिन उनसे पैसे लेकर आना, उन्हें गुड़ और चने ही नहीं लाना। लेकिन धीरे धीरे उसने उन पैसों की बचत करते करते एक छत बना ली जिस जगह पर रहते थे, ताकि सिर छिपा सके। और कुछ समय में उसने तीनों तरफ दीवारें बनाकर एक गेट लगा लिया और एक कमरा तैयार कर दिया। धीरे धीरे उस महिला ने उस घर का नक्शा बदल दिया। वो भाई जो सड़क पर सोकर गुजारा करते थे, किसी रहन बसेरे में रात गुजारते थे, आज एक कमरा उनके पास है। खाने के लिए अभी आटा आने लगा, रोटी बनने लगी, सब्जी बनने लगी, बड़ा सुंदर जीवन यापन करने लगे। आश्चर्य खाया कि हमारे यहाँ तो कोई देवी आ गई है। लेकिन देवी नहीं थी, वो एक सशक्त महिला थी, जिसके पास तन नहीं था लेकिन तन के साथ बुद्धि भी थी, मन भी था। उसने उस परिवार का नक्शा बदल दिया। मैं ऐसा समझती हूं कि महिला बनना एक बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि उनके अंदर नेचुरल पालना का संस्कार होता है, त्याग का संस्कार होता है, सेवा की भावनाएं होती हैं, वात्सल्य की भावनाएं होती हैं। ये उसका नेचुरल गुण होता है और एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए इन गुणों की बहुत आवश्यकता है। और स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने जब देखा ये संसार तमोगुणी विकारों से भरपूर हो चुका है, जहां कहीं गुण नहीं, शक्तियां नहीं, आपस में कलह और क्लेश का समय आ चुका है, अपवित्रता ही जीवन बन चुका है, पवित्रता से प्राणी कोसों दूर जा रहा है, उस समय स्वयं सर्वशक्तिवान ने महिलाओं को जगाया, जागो जागो, इस गिरते हुए विश्व को थामो, इस विश्व को एक नया विश्व बनाओ। उस समय जिन बहनों और माताओं ने अपने जीवन का त्याग किया, सहन किया, दुनिया के ऑपोजिशन का मुकाबला किया, जहां तहां अखबारों में ना जाने क्या क्या खबरें आई, लेकिन कोई परवाह न करके उन्होंने अपने जीवन से अनेकों के जीवन के निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया। आज हम बड़े गौरव से कहते हैं कि हमारे 140 देशों में सेवा केंद्र हैं, और उसके अलावा भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर सेवा केंद्र है, जहां माताएं और बहनें इस कार्य में तत्पर हैं। और मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगी कि एक नए विश्व की शुरुआत में नींव बनने का कार्य महिलाएं कर चुकी, और आज आप सबको आमंत्रित किया गया है, और समय प्रति समय 3 दिन का समय आपका हमारे पास है। हम आपको अवश्य हर बात स्पर्श करेंगे कि आप अपने जीवन को सशक्त कैसे बनाएं, अपने परिवार को सशक्त कैसे बनाएं, और इस सुंदर समाज को सशक्त बनाकर विश्व को सशक्त कैसे बनाएं। ये हमारा अनुभव नहीं, ये देश और विदेश में सेवा में रत मेरी 40,000 से ज्यादा बहनों का ये अनुभव है, जिन्होंने अनेक आत्माओं के जीवन को बदल कर घर को रहने योग्य घर बनाया है, मनुष्य को रहने योग्य जीवन दिया है, मानव को मानवता सिखाई है, और मानव ने दानवता से अपने जीवन को छुड़ाया है। तो मैं आपको यही खुशखबरी देने के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगी, और आप सबको यही आशीर्वाद देना चाहूंगी कि आप अपने जीवन को भी सशक्त कीजिए, अपने परिवार को भी सशक्त कीजिए, अपने समाज और देश को भी सशक्त के लिए एक नए विश्व की रचना के लिए अपने जीवन को थोड़ा त्याग, किस चीज का त्याग? ईश्वर ने केवल मात्र इतना ही कहा, ना घर छोड़ना है, ना धंधा छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, छोड़ना है तो देह का अभिमान छोड़ना है। आज केवल मात्र ये ज्ञान है कि मैं ये नाशवान चोला हूं, और चोले के अनुकूल अगर कुछ प्राप्ति हो गई तो खुशी आ गई, अगर चोले के अनुकूल पद पदवी नहीं मिली तो कष्ट प्रतीत होने लगा। ईश्वर ने हम बच्चों को बताया, ये नश्वर चोला तू नहीं, तू तो अनश्वर चेतन शक्ति आत्मा है। मैं इन सब बातों का अभी वर्णन नहीं करना चाहूंगी, कल आपका जो प्रथम लेसन होगा उसमें बहुत सुंदर आपको दिशा मिलेगी कि हम कौन हैं, इस धरा पर कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, कब तक के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। ये सब बातें जब पता चलती है, प्रतीत हो जाती हैं, तो हमारा जीवन सशक्त बनता है। हम शक्तिशाली हम ही नहीं बनते, लेकिन हम अपने परिवार और अपने आसपास भी शक्तिशाली वातावरण बनाने में सक्षम बनते हैं। इसलिए मेरा हृदय से आप सबको ईश्वर दाता की तरफ से आशीर्वाद है कि दाता, ये सभी आत्माएं ना केवल स्वयं को या अपने परिवार को, लेकिन पूरे देश को अथवा इस विश्व को एक सुंदर विश्व के निर्माण करने में अग्रणी रोल अदा करें। ऐसा ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय दीदी जी का, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से महिला कैसे शक्तिशाली बन विश्व गुरु बन जाए। और वास्तव में तो माता है ही गुरु के स्थान पर, ऐसी सुंदर प्रेरणाएं दी आपने। अब मैं बहनों को इनवाइट करती हूँ कि वह मंच पर बैठे हुए हमारे विशेष मेहमानों का आदरणीय दीदियों के द्वारा शॉल और ईश्वरीय प्रसाद देकर सम्मान करें। आप सभी के लिए सूचना है, कोई भी कृपया उठे नहीं। जो भी महिला सेमिनार में हमारी माताएं आई है, बीते टीचर्स बहने आई हैं, या जो भी वॉलंटियर्स गाइड्स आए हैं, सभी को आज ही ईश्वरीय सौगात मिली थी। और उस सौगात से पहले हमारी सविता बहन कुछ 3 दिन के सेमिनार के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी। हमारी चक्रधारी दीदी जी, हमारी नेपाल से आई हुई विद्या बहन का शॉल पहन के सम्मान कर रहे हैं। शारदा दीदी जी ईश्वरीय प्रसाद देंगे दे।